विश्व दर्पण। तो कार्यक्रम विश्व दर्पण में आपका स्वागत है, मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में हम बात करेंगे अमेरिका की ओर से ईरान के खिलाफ छिड़ गए आर्थिक युद्ध की। अमेरिका ने वैसे तो ईरान में इस्लामी क्रांति आने के बाद से ही इस देश के खिलाफ विभिन्न स्तरों पर युद्ध छेड़ दिया, लेकिन आर्थिक क्षेत्र उन क्षेत्रों में है जिन पर अमेरिका का जोर बहुत ज़्यादा रहा और उसने कोशिश की कि ईरान को आर्थिक रूप से बेबस कर दे। ये लड़ाई 1979 से चल रही है और आज भी जारी है। इस समय अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने ईरान से होने वाले परमाणु समझौते से बाहर निकलने के बाद इस्लामी गणतंत्र ईरान पर आर्थिक हमले तेज कर दिए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का कहना है कि ईरान पर ऐसे प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं जो इससे पहले कभी नहीं लगाए गए थे।
On the Iranian regime. The sting of sanctions will be painful if the regime does not change its course from the unacceptable and unproductive path it has chosen to one that rejoins the League of Nations. These will indeed end up being the strongest sanctions in history when we are complete.
हालांकि अमेरिकी अधिकारी हर बार यही कहते हैं कि इस बार जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं उसका अतीत में कोई उदाहरण नहीं है। अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही ये कोशिश भी तेज कर दी है कि दुनिया के देश अमेरिका की बात मानते हुए ईरान से तेल खरीदना बंद कर दें। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका की राजदूत निकी हेली ने भारत का दौरा किया और भारत पर जोर डाला कि वो ईरान से तेल खरीदना बंद कर दे। निकी हेली का कहना था कि अमेरिका भारत को इस मामले में कोई ढील नहीं दे सकता।
We did talk about this. I did with Prime Minister Modi. We do have this in terms of our dialogue because I think that India also recognizes the threats of Iran. We understand the logistics that come into play with Iran, but we have to always make sure that the priority is peace and security. And as long as the priority is peace and security, the U.S. is going to continue to try and work with our partners, our friends, and our allies to make sure that we are all pushing Iran to be a good, accountable international neighbor.
मगर भारत ने संकेत दिया कि वो ऊर्जा के मामले को बहुत महत्व देता है और अमेरिका के आगे झुकने वाला नहीं है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार।
Feel that Iran is a very traditional partner. We have historical civilization linkages with Iran. As far as we are concerned, we will take all necessary steps, including engagement with relevant stakeholders to ensure our energy security.
भारत के वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ का कहना है कि अमेरिका ईरान से तेल और रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने के मामले में जिस तरह भारत को निर्देश दे रहा है उसका उसे अधिकार नहीं है।
एक तो अमेरिका को एतराज़ है कि रूस का सिस्टम ना खरीदा जाए, मिसाइल सिस्टम S-400। दूसरा, नॉर्थ कोरिया से रिश्ते ना बनाए जाएं। ये पिछले साल अक्टूबर में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को कह दिया गया था। इसके बाद जब मई 2018 में हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जनरल वी के सिंह वो प्योंगयांग गए, नॉर्थ कोरिया की राजधानी, और एक सरप्राइज विजिट था। बहरहाल वो जो भी रहा सरकारों के बीच। तीसरा, उनका ये कहना है, सबसे बड़ी शर्त है कि आप ईरान से तेल खरीदना बंद करो, पेट्रोल खरीदना बंद करो, क्रूड ऑयल जो आता है 4 नवंबर तक बंद कर दो वरना हम आप पर सैंक्शन लगा देंगे। यही वजह है ये मीटिंग नहीं हो रही है, अमेरिका की धमकी है। यही कूटनीति करने के लिए हमारे प्रधान सेवक गए थे और गले मिलते रहे हैं हम जाकर। यहाँ ट्रंप का जन्मदिन मनाया जाता है, उन्हें केक खिलाया जाता है, उनकी फ़ोटो को तपस्या कर रहा है एक आदमी ट्रंप का फोटो लेकर, कि अमेरिका अपने असली चेहरा अब दिखाना शुरू कर रहा है। अमेरिका के लिए उसके हित ही सबसे बढ़कर है। वो ना आपकी परवाह करता है, ना आपकी जफ्फियों की परवाह करता है, ना वो वहाँ के उन NRIs की परवाह करता है जो मेडिसिन स्क्वायर पर मोदी 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 चिल्लाते हैं। उसे अपने से मतलब है। 4 नवंबर की डेडलाइन हमें दी गई है कि ईरान से या तो बिल्कुल इम्पोर्ट बंद करो या बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोल लेना बंद करो, उसके बदले सऊदी अरेबिया या इराक से लो। अब हमारी रिफाइनरीज जो हैं सारी वो ईरान के तेल के मुताबिक हैं। इनका कहना है कि बैरल्स को तब्दील कर दिया जाएगा, उनमें कोई दिक्कत नहीं होगी, रिफाइनमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ईरान से मत लो आप। अब हमें बताइए कि हम क्या अमेरिका की कॉलोनी हैं या हम कोई ऐसे वैसे छोटे मोटे बनाना रिपब्लिक हैं जिसे अमेरिका धमका सकता है। सन 71 की जंग मुझे याद आ रही है, पाकिस्तान के साथ जब हुई, जब बांग्लादेश बना, तो अमेरिका ने अपना बेड़ा भेजा था, एक जंगी जहाज़ों का बेड़ा, एयरक्राफ्ट कैरियर USS एंटरप्राइज बंगाल की खाड़ी में। मिसेज इंदिरा गांधी ने तब परवाह नहीं करी थी उसकी, और रूस ने भी बता दिया था आपका बेड़ा आएगा, हमारी पनडुब्बियाँ जगह जगह से निकलेंगी बे ऑफ बंगाल में। तो एक ज़माना वो था जब हमने अमेरिका की परवाह नहीं करी और डरे नहीं। एक दौर ये है कि बार बार जाके जफ्फी डाल के पारंपरिक रिश्ते ख़त्म करके इनसे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की गई है। नतीजा ये सामने आ रहा है, 4 नवंबर तक हमें पेट्रोल ऑयल, जो क्रूड ऑयल होता है, इराक से या तो लेना बंद करना पड़ेगा, ईरान से माफ़ कीजिए, या बहुत बड़ी कटौती करनी पड़ेगी।
अमेरिका इसी प्रकार का दबाव चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया और यूरोपीय देशों पर भी डाल रहा है, मगर अधिकतर देशों ने अमेरिका की बात मानने से इनकार किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि आगामी 4 नवंबर की तारीख आने तक सभी देश ईरान से तेल खरीदना बंद कर दें, मगर अधिकतर देशों ने अपने बयानों में यही कहा है कि वो अमेरिका की बात नहीं मानेंगे। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान के प्रवक्ता डॉक्टर इब्राहिम कालेन ने कहा कि न तो हम ईरान से तेल खरीदना बंद करेंगे और न ही रूस से S-400 मिज़ाइल सिस्टम खरीदने का फैसला बदलेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान हमारा पड़ोसी देश और महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। ईरान के तेल के प्रमुख खरीदारों में चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, तुर्की का नाम लिया जाता है। इसके अलावा इटली, फ्रांस, यूनान और स्पेन भी ईरान से तेल खरीदते हैं। अब तक इन देशों में से किसी भी देश ने ये नहीं कहा है कि वो अमेरिका की मांग मानने के लिए तैयार है। हालांकि अमेरिका ने यह आश्वासन दिया है कि सऊदी अरब उन देशों को तेल की सप्लाई बढ़ा देगा जो ईरान से तेल खरीदना बंद कर देंगे। कारण यह है कि अमेरिका पर पहले भी अधिकतर देशों को भरोसा नहीं था और ट्रंप की सरकार आने के बाद तो अमेरिका अन्य देशों के लिए असहनीय होता जा रहा है, और ये केवल ईरान के मामले में नहीं बल्कि दूसरे भी अनेक मुद्दे हैं जिन पर अमेरिका के घटकों को काफ़ी परेशानी है। ईरान के परमाणु समझौते के मामले में यूरोपीय संघ ने खुलकर अमेरिका का विरोध किया था। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रभारी फेडरिका मोगरीनी ने ट्रंप प्रशासन से बिल्कुल अलग लाइन पर चलने की बात कही थी। इस समय ईरान के तेल के निर्यात पर रोक लगाने का मामला है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना तेल न बेच सके और यदि बेचे तो उसकी कीमत वसूल न कर पाए। ईरान का तेल बाजार में न जाने की स्थिति में उसकी कमी पूरी करने के लिए ट्रंप प्रशासन ने सऊदी अरब को इस्तेमाल किया। अमेरिका के आदेश के अनुसार सऊदी नरेश सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि उनका देश तेल उत्पादन की मात्रा में प्रतिदिन 20 लाख बैरल की बढ़ोतरी करने जा रहा है। इस तरह सऊदी अरब ने तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक के उस निर्णय को भी नज़रअंदाज कर दिया जिसके अनुसार केवल 10 लाख बैरल की बढ़ोतरी की जानी थी। ये बात बिल्कुल साफ है कि सऊदी अरब इस समय एक बार फिर अमेरिका के हथकंडे के रूप में काम कर रहा है। उसने यही भूमिका कुवैत युद्ध और इराक युद्ध के दौरान भी निभाई थी और उसके विनाशकारी परिणाम खुद सऊदी अरब को भी भुगतने पड़े थे और आज भी भुगतने पड़ रहे हैं। इस बार भी सऊदी अरब अमेरिका के हाथों में खेल रहा है। ईरान के उपराष्ट्रपति इसहाक जहांगीरी का कहना है कि यदि कोई भी देश तेल उत्पादन में ईरान का हिस्सा हथियाने की कोशिश करता है तो ये विश्वासघात है और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये भी एक तथ्य है कि इस्लामी गणतंत्र ईरान कई साल से इस कोशिश में है कि अर्थव्यवस्था की तेल पर निर्भरता समाप्त हो जाए, और इसके लिए ठोस योजनाएं तैयार की गई हैं और उन पर काम भी हो रहा है। इस्लामी गणतंत्र ईरान प्रतिरोधक अर्थव्यवस्था की नीति पर काम कर रहा है। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता लंबे समय से यही कह रहे हैं कि देश का उत्पादन बढ़ाया जाए, अर्थव्यवस्था को प्रतिरोधक बनाया जाए और इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएं।
در اقتصاد مقاومتی تکیه بر تولید داخلی است، بر استحکام بنیه درونی اقتصاد است. رونق اقتصادی هم اینه. رونق اقتصادی با تولید حاصل می شود، با فعال کردن ظرفیت های درونی کشور حاصل می شود، نه با چیز دیگر.
इस्लामी गणतंत्र ईरान की प्रतिरोधक अर्थव्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। ये विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसका स्वरूप ये होगा कि ये मूल रूप से आंतरिक और स्थानीय स्तंभों पर टिकी होगी, लेकिन दुनिया के अन्य देशों से सहयोग भी करती रहेगी। ये अर्थव्यवस्था ऐसी होगी कि बाहरी दुनिया और विदेशों में लिए जाने वाले निर्णय का इस पर गहरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ऐसा नहीं होगा कि दुनिया के किसी दूसरे सिरे पर कोई निर्णय लिया जाता है तो उससे ये अर्थव्यवस्था हिल जाए। इसी पर इस्लामी गणतंत्र ईरान का जोर है। ईरान के बारे में अमेरिका की सरकार की रणनीति की आलोचना अमेरिका के भीतर भी की जा रही है। जाने माने राजनेता रॉन पॉल ट्रंप प्रशासन की नीतियों को अनुपयोगी बल्कि उल्टे परिणाम देने वाली मानते हैं।
From what I read, what's been happening here these last few days, it looks like he's trying to fix the price of oil. He wants low gasoline prices, and instead that all presidents want low gasoline prices in the summer, because if the prices go up, the president gets blamed, yeah. which is a fallacy as well, unless the president does something and the Congress does something to push the price of oil up. Well, because of this, this is related in some ways to Trump's orders that and his desire of all our allies and people outside of Iran don't buy any more oil from Iran. We got to punish them, which is rather bizarre because this is related to the nuclear Iranian deal. You know, uh-huh. we got out of it, and the Europeans don't like this. But now we have to put on our sanctions, and this is part of this effort to have sanctions. So he is saying nobody should buy it, and I'm going to give you to November 2nd, some day in November, yeah. to do it. But I don't know what he's going to do about it, because the people who buy are Russia and China, and they're even trying to do this without the use of the dollar as the currency. So it is a mess. In one sense, he's doing something that would push the price of oil up. Matter of fact, when he made this announcement, oil went up just about $3. Wow. It is back up to $73 right now, pushing prices up.
Islamic Ganatantra Iran बहुत लंबे समय से अमरीकी प्रतिबंधों का सामना करता रहा है। इसके साथ ही अन्य देशों ने भी ईरान पर जो प्रतिबंध लगाए उससे इस्लामी गणतंत्र ईरान जूझता रहा है और अपनी क्षमताओं को विकसित करता रहा है। इस समय भी जो चरण सामने है उसमें इस्लामी गणतंत्र ईरान निश्चित रूप से सफल होकर बाहर निकलेगा और प्रतिबंध लगाने वाले देशों को एक बार फिर पछताने पर मजबूर कर देगा।